तो ये आदत करने के लिए करना क्या चाहिए, इसको चंद चीज़ों में नोट कीजिए। इसमें भी हमारे यहाँ बड़ी कमी है। हमने किसी को देखने जाना, सबसे पहले कहते फूल लाओ, आज नहीं जा रहे, फूल नहीं मिले इसलिए। फ्रूट लेकर आओ, मिठाई लेकर आओ, केक लेकर आओ। अब मरीज बेचारा केक खा नहीं सकता, आप इतना बड़ा केक का डब्बा उठाकर किसी की तीमारदारी को चले, और शुगर पेशेंट को देखने गए और आमों की पेटी ले गए, तो आप उसके जख्मों में नमक तो नहीं, आम तो मल के ही आएंगे ना। थोड़ी सी समझ करनी चाहिए। बास लोग आप देखिए कि वो काम कर रहे होते हैं जो शुरू से दूसरों को करता देखते हैं। तो पहली बात है कि ये आदत करने जाने के लिए कुछ खाना पीना या तोहफा ले जाना भी दुरुस्त नहीं। खास तौर पर ये जो पीछे बात की है ना आपके साथ अभी मुलाकात, आप किसी के घर गए आप क्या लेकर जाएंगे, ये जो एक अजीब रस्म बन गई है ना। रस्म इसलिए कहती हूँ कि वो चीज़, देखिए अभी आगे हम तोहफे की भी बात करेंगे तो वहाँ भी आ जाएगा, लेकिन मुलाकात करने के लिए जाना और उस वक़्त हाथ में कुछ ज़रूर लेकर जाना, ये रस्म है, पक्की बात है, ये रस्म है। जो चीज़ अगला आपसे एक्सपेक्ट करने लग जाए, ये रस्म है। तोहफा क्या है? अनएक्सपेक्टेड, अचानक आपने निकाल कर कुछ दे दिया, ये मेरा दिल कर रहा था आपको दूं, ये मैंने आपके लिए लिया था, मुझे याद आई थी, चले आप कहीं बाहर गए, पसंद की कोई चीज़ लेके आए, रख दी। ये भी ज़रूरी नहीं कि अब जब गए वहाँ से क्या लेकर आएंगे, मरी गए हैं तो अब सबके लिए गर्म चादरें लेकर आएंगे। अब वो गरीब बेचारे मरी जाकर सारा गम ही ये पड़ता रहता है कि हाय क्या लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जी हज पे गए हैं, हर तवाफ़ में सोच रहे हैं किसको क्या देना है। कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाही की बजाय वो लिल खानदान और वालदैन के लिए शुरू हो रहा होता है। ऐसी चीज़ों से बचें। आप बीमार को देखने गए हैं, आपके पास कोई दुआओं के कार्ड्स, कोई दुआओं की बुक्स, कोई ऐसी चीज़ें जिसको पढ़ने से उसको फ़ायदा हो, पढ़ नहीं सक रहा बेचारा किसी वजह से तो सुन सके, या उसको किसी किस्म की उसमें सहूलत का सामान हो वो ले जाइए, लेकिन इसको रस्म ना बनाए, ये भी इसराफ होता है। बाज़ लोग बीमारों को देखने जाते हैं, वहाँ जाकर देखे 10 फ्लावर बके पहले ही रखे हुए, आप एक और ले गए, अब इतने फूलों को वो क्या करेगा बेचारा। तो इससे थोड़ा सा इवॉइड करने की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह से बेहतर यह कि इजाज़त लेकर जाए, मुनासिब वक्त पे जाए, ऐसा वक्त जिस पे वो खुशी महसूस करें। फिर अगली बार ज़्यादा देर ना बैठें और जाकर उसका हाल ऐसे ना पूछे कि वो बेहाल हो जाए। बहुत सारे क्या हाल है, फिर पूरी बीमारी उनसे ही सुनेंगे, फिर क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। ये चीज़ें बाज़ दफ़ा बीमार को दुख देती हैं। और जाकर उसकी जिस्मानी हैयत या रंग ढंग पे कहना, आपका तो रंग पीला हो गया, आंखें तो अंदर ही चली गई, बस अब आप तो जाने ही वाले हैं, ये अंदाज़ नहीं करना चाहिए। अगले बंदे को खुशी दें, करें क्या, उसको ज़िंदगी की उम्मीद दिलाएं, पुरउम्मीद बातें करें, आप पहले से बेहतर लग रहे हैं ये जुमले बोलें, उनको मसरूफ़ कीजिए, कोई ऐसा काम दीजिए कि जिसके बाद वो उस बीमारी को नेमत समझें। देना है तो उनको कोई सीडी प्लेयर दे दें सीडीज के साथ के बैठिए और सुनिए, कुछ करना है तो उनका नाम किसी ग्रुप में डाल दें, कोई व्हाट्सएप में से उनको डेली कुछ भेज दें, कोई फ़ोन में चला दें, फ़ोन नहीं है तो आप कहीं किसी सूरत में अपने पास USB में कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले जाएं। कमरों में अमूमन आप देखिए कि लैपटॉप्स कंप्यूटर्स होते हैं, यानी उनको बताइए कि फरागत नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं, नेमतानी, दो नेमतें ऐसी हैं कि जिसके बारे में लोग गबन का शिकार है, उनमें से एक सेहत और एक फरागत है। और आप देखिए कि जब आप आदत करने जाते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी। बीमारी है, सेहत चली गई, कदर आ जाएगी ना, और फरागत आ गई, कोई बात नहीं, बीमार के पास बहुत सारा वक्त होता है। तो फिर याद रखिए कि आदत इसलिए भी करनी है कि ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। सही मुस्लिम की रिवायत है 5650, 6 हकूक हैं जो मुसलमान के मुसलमान पर, उसमें से एक ही है। फिर आप देखिए कि आदत से दूसरे के दिल की तसल्ली होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको मौका मिल जाता है एक बात का, और वो क्या, शुक्र का, कि अल्लाह आपने मुझे बचा लिया इस तकलीफ़ से। जब बीमार के पास जाएं तो वो दुआ ज़रूर पढ़िए जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ में देखे तो ये दुआ कर ले, तो अल्लाह ताला उसको उस तकलीफ़ से बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाका बिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफदीला। बहुत सारी किताबों में ये दुआ मौजूद है, इसके स्टिकर्स कार्ड्स मौजूद हैं, ये दुआ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह आपको उस बीमारी से बचा लेगा। फिर सही मुस्लिम की रिवायत है 6556, अबू हुरैरा रावी हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, इब्ने आदम मैं बीमार हुआ, तूने मेरी खबर ही ना ली। वो कहेगा, मेरे रब मैं तेरी खबर कैसे लेता, तू तो सारे जहान का मालिक है। उस पर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फलां बंदा बीमार हुआ तो तूने उसकी खबर ना ली, अगर तू इसकी खबर लेता तो मुझे उसके नज़दीक पाता। सुबहान अल्लाह, कितना अल्लाह ताला के नबी का ये अंदाज़ है रग़बत दिलाने का। देखिए, हम कहते हैं कोई अपना बीमार हो तो हम जाएं, अल्लाह ना करे अपना कोई बीमार हो, अदर लेने ना हॉस्पिटल्स में से चले जाइए, कभी किसी को देख लें नेबर में कोई बीमार, और 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और कोई किसी एक ही बीमार को देखना लाजमी भी नहीं होता, बीमार तो सारे शहर में कितने ही होंगे। ताल्लुकात को बढ़ाने का एक तरीका भी हो जाता है। फिर इसी तरह एक बड़ी प्यारी रिवायत है सही मुस्लिम में ही 6551, कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की इयादत सुबह को करे तो शाम तक, और अगर शाम को करे तो सुबह तक, 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं, और जन्नत में इसके लिए बाग बना दिया जाता है। अबू दाऊद की रिवायत है 3098। और इसी तरह से फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं और जन्नत की खुशखबरी देते हैं इयादत करने वालों को, मुस्लिम 6551। तो क्या करना है, आदाब सीखने हैं और जाना है, करें क्या, नंबर एक, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आदत कीजिए, वही बात है मुखलसीन अलहुद्दीन, अल्लाह का हुक्म समझ कर कीजिए, सवाब की उम्मीद पर कीजिए, खलूसे दिल के साथ मुसलमान भाई का हक अदा करने की नीयत से कीजिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए कीजिए। फिर इसी तरह जब किसी का मर्ज तवील हो जाए तो ख़ास तौर पर इयादत करने में देर नहीं लगानी चाहिए, जल्दी कीजिए, ये नहीं कि आप मसरूफ़ रहें अपने कामों में और अल्लाह ताला उस मरीज़ को या तो शिफा दे दे या फिर वो दुनिया से चला जाए और आप कहें कि मैं तो नियत ही करती रह गई और मैं ये काम नहीं कर सकी। फिर इसी तरह से छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, यानी उम्र में कोई बहुत छोटा या गरीब क्यों ना हो, उसकी भी आदत कीजिए। बुखारी की रिवायत है 7377, आप अपनी बेटी के पैगाम पर उसके बच्चे को देखने के लिए आए, यानी नवासे को देखने के लिए भी आए, और इमाम बुखारी ने आपको बताया कि इस पर क्या बाब बंद है, बाबु इयादतु सिबियान, बच्चों की भी आदत की जा सकती है, कितना फहम था उनका इस बात में। फिर इसी तरह क्या कोई मर्द बीमार है तो औरतें, या औरत बीमार है तो मर्द इयादत कर सकते हैं, शरई जाब्तों और हदूद में रहते हुए ऐसा किया जा सकता है, बुखारी 5654 और मुस्लिम 1376, और इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा है, बाब इयादतुन निसाउर रिजाल, क्या औरतें मर्दों की इयादत या फिर उसके अपोजिट कर सकते हैं। उम्मे दरदा अहले मजलिस में से एक अंसारी की इयादत के लिए आई, इस तरह नबी सल्लम एक मस्कीन औरत की आदत के लिए गए जब वो बीमार हुई, ये सारे दलाइल मौजूद हैं। तो लिहाजा फितने का डर ना हो, शरई हदूद हो, तकवा की हिर्स हो, गस्से बसर पे कारबंद रहें, तो फिर ये काम किया जा सकता है। फिर इसी तरह मुशरिक की आदत की जा सकती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारे कोलीग्स और साथी, बिल्कुल की जा सकती है, बल्कि इस उम्मीद पर कीजिए कि आज बेस्ट मौका है उसको दावा का, अल्लाह के साथ करीब होने का, मौत का डर दिलाइए, शायद वो मुसलमान हो जाए और बेहतर हो जाए, बुखारी की रिवायत है 5657। फिर इसी तरह जब मरीज़ के हालात बहुत ख़राब हों, मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर जाए, हत्ता के बेहोश हो जाए, तब भी इयादत करनी चाहिए, बुखारी 5651। फिर इसी तरह बुखारी की एक और रिवायत नोट करें 5664, पैदल जाकर इयादत करने का अजर और भी ज़्यादा है सवार के मुकाबले में, दूर की मुसाफत है तो सवारी यूज़ की जा सकती है। फिर इसी तरह से एक और चीज़ क्या है कि तवील बीमारियाँ होती हैं, अब आप कहते हैं कोई नया नया बीमार हुआ है तो उसकी इयादत चलें, जैसे हमारे घरों में मारूफ है, अरे फलां बीमार है चलते हैं, फलां की अम्मा बीमार हो गई, किसी की तवील बीमारी में से शुगर है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी कर सकते हैं, आपने तो सवाब लेना है। अबू दाऊद 3100 इसकी दलील में मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर इसी तरह से जब जाएं तो अगर घर वालों से पहले कोऑर्डिनेशन करके कोई ऐसी चीज़ जो मरीज़ के इस्तेमाल की हो, या घर वाले मसरूफ़ हैं उनके खाने के लिए ले जाएं, ये बहुत पसंदीदा अमल है। देखिए, एक खाने हैं जो आप और मैं एक दूसरे को खिलाते ही रहते हैं, वो भी अजर होगा, लेकिन जिस दिन आपके अपने घर में ना पके उस दिन कोई भेजे तो उसकी ज़्यादा कदर और ख़ुशी होती है और इससे घर वालों को सुकून मिलता है। बुखारी 6266। मरीज़ के सर की तरफ बैठना चाहिए, ये सुन्नत है रसूल की। बुखारी 1356। इससे मरीज़ राहत महसूस करता है और मरीज़ के सर पर हाथ फेरना और दुआ करना और हाथ को पकड़ना भी अगले को अच्छा महसूस कराता है। फिर इस तरह मरीज़ से उसका हाल पूछना भी नबी सल्लम की सुन्नत है, तिरमिज़ी 383। और मरीज़ के साथ भलाई के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह की हम्द व सना करें। और जब आप उसको खुशखबरी देंगे तो तकलीफ़ बर्दाश्त करनी आसान हो जाएगी और वो अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो जाएगा। अबू दाऊद 3092। इसी तरह आप मरज़ में अल्लाह की हिकमत का तस्करा करते थे, बुखारी 5641। यदि मरीज़ को ये बताया करें कि इसमें भी हिकमत है कि अल्लाह ने आपको बीमार किया। फिर इसी तरह से जब आप मरीज़ के पास से उठें तो उसको अच्छा लगे। एक काम और किया जा सकता है, और वो क्या कि अगर इयादत करने वाला खुद सालेह है, नेक शख्स है, वुजू करे और बचने वाला पानी मरीज़ पर छिड़क दे। ये नबी सल्लम का तरीका है, बुखारी 5651। इब्ने हजर जो माशाल्लाह बहुत बड़े मुफसिर थे, शरह लिखते थे बेसिकली, हाफिज इब्ने हजर अल असकलानी, वो कहते हैं कि ये बात छुपी भी नहीं है कि जब इयादत करने वाला ऐसा हो तो इससे मरीज़ को बरकत मिलती है। फतहुल बारी जिल्द 10 पेज 138। फिर इसी तरह मरीज़ को तकदीर पर सब्र और अल्लाह के हुक्म पर राज़ी रहने की तलकीन करनी चाहिए, ये जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से है। आले इमरान 146 और तिरमिज़ी 2396। बस वह मरीज़ तकदीर से नाराज़ होता है तो उसको तकदीर को बुरा भला कहने से रोकना चाहिए। सही मुस्लिम 6570। अब आप देखिए, सिर्फ इयादत करते हुए आप कितनी नेकियां ले गए। फिर इसी तरह मरीज़ के लिए दुआ और शरई झाड़ फूंक का अहतमाम भी किया जा सकता है। अल्लाह के नबी के ये अफ़ाल में से एक फ़ेल था, आपने फरमाया, यानी जब नबी सल्लम बीमार हुए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अल्लाह के नबी पर एक दम किया था। मैं बोलती हूँ, आप भी मेरे साथ दोहरा लीजिए और ये आपको दम ज़रिया इलाज बुक में भी इंशाल्लाह मिलेगा। बिस्मिल्लाही अरकीका मिन कुल्ली शयिन युज़ीका मिन शर्री कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका। बिस्मिल्लाही अरकीका। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, 5700। अल्लाह के नाम से हर उस चीज़ के शर से जो आपको तकलीफ़ देने वाली हो और हर नफ्स या हसद करने वाली आँख के शर से मैं आपको दम करता हूँ। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ। ठीक है, तो ये दुआ भी आप साथ लिख कर ले जाइए, वहाँ बैठ कर सुना दीजिए। फिर इसी तरह मरीज़ पर मुअव्वज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़कर फूंकना भी मुस्तहब है, बुखारी 5735। फिर इसी तरह मरीज़ को मौत की तमन्ना से रोकना चाहिए। अल्लाह के नबी हज़रत अब्बास की आदत के लिए आए और जबकि वो बीमार थे तो हज़रत अब्बास ने कहा कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, तो आपने फरमाया कि चचा मौत की तमन्ना न करो। फिर अगर नेक हैं आप और आपको मोहलत मिल जाए तो नेकियों पर नेकियों का इजाफा होगा जो आपके हक में बेहतर होगी, और अगर आप गुनाहगार हैं तो उम्र मिली, तौबा करेंगे, भलाई होगी तो मौत की तमन्ना ना करें। मुस्तदरक हाकिम जिल्द 1339 नंबर है ये, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर इसी तरह मरीज़ को शिकवा करने से बचाना चाहिए क्योंकि शिकवे अल्लाह को पसंद नहीं, इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। फिर इसी तरह मरीज़ को अल्लाह से हुस्ने ज़न रखने की नसीहत करे ताकि अल्लाह से अच्छे ज़न के साथ मिले, ताकि अल्लाह ताला भी उसके साथ अच्छा मामला करे। फिर इसी तरह से मरीज़ के चेहरे मोहरे से दिखने लग जाता है कि अब वो सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, तो वहाँ से उठ जाइए, इस वक्त ज़्यादा ना करें। ताऊस कहते हैं कि सबसे अफजल इयादत सबसे कम देर की आदत होती है। क्या पता चला कि थोड़ी देर बैठिए, ज़्यादा देर ना बैठें। हम मरीज़ कहें कि आप बैठिए बातचीत करें तो फिर कोई हर्ज नहीं है, और ख़ास तौर पे फिर घर वालों को भी थोड़ा सा मौका दें सब्र की, खिदमत की और हुस्ने सलूक की नसीहत करें। इमाम नववी जिन्होंने सही मुस्लिम की शरह लिखी, वो कहते हैं कि ये अदब वाजिब है, इसका एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि घर वाले खिदमत को बोझ समझने लगते हैं, और ख़ास तौर पे जबकि बीमारी तूल पकड़ जाए तो घर वालों पर खिदमत मुशक्क़त होती है। तो इयादत के असूलों में ये भी है कि घर वालों को भी थोड़ा सा तसल्ली दीजिए। एक और काम कर सकते हैं आप बीमार के पास, वसीयत की तलकीन करें। ज़िंदगी की निस्बत मौत के करीब होता है इंसान बीमारी में, हालांकि मौत बीमारी की वजह से नहीं आती, तो लिहाजा वसीयत करके इंसान अपने जहन में जो बातें सोची होती हैं उसको दूसरों तक पहुंचा दे, ताकि अगर मौत आ भी गई तो उसके दिल की बात दिल में ना रह जाए। फिर इसी तरह से हज़रत साद बिन माज जब गज़वे खंदक में ज़ख्मी हुए थे तो अल्लाह के नबी ने इनका खैमा ही मस्जिद में लगवा लिया, ताकि बार बार आपकी इयादत कर सकें। बुखारी की रिवायत है 4122। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बीमारियों से बचाए, और जो बीमार हैं उनके साथ हमें अच्छे मामले करने की तौफीक अता फरमाए। आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए करेंगे ना, कल आपके लिए भी आसान हो जाएगा। फिर इसी तरह हम जाते हैं तो बंदे मरीज़ को सारे ही टोटके ये खा लें, लस्सी में डाल के, गोभी में, ये ना खाएं वो ना खाएं, बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आजकल आप देखिए दवाएं इस किस्म की आ गई हैं कि किसी चीज़ के साथ कुछ लगता है, कुछ के साथ नहीं लगता। कोशिश करके पहले से ये बातें आम कर देनी चाहिए कि आर्टिफिशियल दवाइयाँ ना ही खानी पड़े। और यकीन करें कि अगर आप अपने लिए ये बातें सुन रहे हैं ना, तो दुआ करें कि अल्लाह हमें बीमारी ना करे, और अगर बीमार करे तो कड़वी दवाइयाँ और इस तरह के इलाज जिसके बाद इंसान मोहताज हो जाता है। मैंने देखा है बाज़ लोग ट्रैंक्लाइजर्स लेते हैं, बाज़ लोग रिलैक्सेंट्स लेते हैं, बाज़ लोगों को टेंशन और स्ट्रेस की गोलियाँ। कभी ज़िंदगी में इसको हाथ ना लगाइए, ये तो अपने आप को खुद एक ऐसी आग में डालना है कि जिसमें से फिर इंसान जीते जी तो नहीं निकल सकता। दवा खा लें तो आप ठीक हैं, ना खाएं तो आप दीवाने और मजनू बन जाते हैं, आप अपने आप को काटने खा जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसी तकलीफों और बीमारियों से दूर रखे जिसमें उसने दूसरों को डाला है। अब ये चीज़ें तो हो गईं, एक और काम जो हम सबको बड़ा प्यारा लगता है वो क्या है, मेहमान बनना। मेहमान नवाजी नहीं अच्छी लगती, मेहमान बनना अच्छा लगता है। खाना ज़्यादा ना बनाना पड़े, और कितने अपने हस्बैंड से सिर्फ इसलिए नाराज़ रहते हैं कि रोज़ किसी को बुला लेते हैं, साथ ही ले आते हैं। आप देखिए कि दीन कितना खूबसूरत है। आप देखिए, आप मेहमान बने या मेज़बान, दोनों में अजर है। अब यहाँ हम मेहमान नवाजी के आदाब पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमें अमूमन इसका ज़्यादा मौका मिलता है। हमारे घरों में मेहमान आए रहते हैं, और बाज़ लोग तो अल्लाह रहम करे, मेहमानों का आना उनके सुख चैन का जाना बन जाता है। क्लासों से छुट्टियां, मेहमान आए हैं। मैं कहती हूँ आपके घर मुसलमान मेहमान ही आए हैं ना, आपके कोई दुश्मन मेहमान तो नहीं, दोस्त है ना, आप उनको फारिग कराएं, चाय पानी नाश्ते दें, उन्हें कि हेल्प योर सेल्फ, आई एम गोइंग, आई विल कम बैक। तो मेहमान नवाजी का पहला अदब लिख लें, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी चाहिए। छुट्टी के लफ्ज़ के साथ ही मेरे अंदर इतना नेगेटिव रिएक्शन आता है कि मैं बता नहीं सकती कि वो मेहमान कैसे रहमत हो सकता है जिसकी वजह से हम अपनी नमाज छोड़ दें। तो नमाज नहीं छोड़ सकते तो हम क्लास कैसे छोड़ सकते हैं, सीधी सी बात है। और यकीन करें, सिर्फ मनवाने वाली बात है। आप जॉब करें, मेहमान आ जाएं, मेहमान रहने में ले आए, 3 माह के लिए आ गए, 1 माह के लिए पाकिस्तान से, इंडिया से कोई आ गया, तो क्या आप छुट्टियां ले लेते हैं? वो तो खुद कहेगा बेटा तुम जाओ, हम देख लेंगे। बल्कि और भी फायदा होता है, घर में बच्चे हैं तो उनको देख लेते हैं। अगर आपको खुद यकीन है ना कि आप कर सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं, तो आप कभी अपने फ़राइज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मेहमान नवाजी को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस्लाम का एक रिचुअल है, सही मुस्लिम 173, अबू हुरैरा से रिवायत है कि जिस शख्स का ईमान अल्लाह ताला रोज़े क़यामत पर हो, चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे, यानी मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। अब कैसे मेज़बान बने, इसके दो हिस्से कर लेते हैं। दावत से कबल के आदाब। पहली बात है कि जब किसी की मेज़बानी का मौका मिले तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी खिदमत करें, और अल्लाह से ही अजर की तवक्को रखें। दूसरी बात, मुत्तकी और परहेजगार को मेहमान बनाइए। रिवायत आपके सामने है, बहुत सारे हवाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन आदमी की सोहबत इख्तियार करो, और तुम्हारा खाना भी कोई मुत्तकी ही खाए। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद 4832। इसी तरह मेहमान नवाजी के लिए सिर्फ मालदार लोगों को मखसूस नहीं करना चाहिए, फुकरा को भी बुलाना चाहिए। बुखारी 5177। फिर ऐसे शख्स को दावत नहीं देनी चाहिए जिसके शरीक होना मुश्किल हो, क्योंकि इस दावत से उसको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ना आ सकने की वजह से वो अजियत में होगा, और मोमिन को अजियत देना हराम है। और इसी तरह से अगर वो ना आया तो बुलाने वाले को भी बुरा लगेगा। फिर अगला मैनर नोट कीजिएगा कि फ़ख्र जतलाने के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा और मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करने के लिए मेहमान नवाजी करनी चाहिए। चलिए आगे, मेहमान दावत में अब क्या करें। नंबर एक, फिर स्माइली फेस। हर अदब में आज तो आप स्माइली बन ही जाएंगे। यहाँ तो आप रहते हैं, घर जाकर नागवार हालात में स्माइल, तो उम्दा तरीके से मुस्कुराते चेहरे के साथ मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। कुशादा पेशानी, खिलता हुआ चेहरा और आंखों में चमक लेकर इस्तकबाल कीजिए। आने वाला खिल जाता है। मैं तो अक्सर एक जुमला बोलती हूँ, सारे सफ़र की थकन दूर हो गई आपको देखकर। और आप देखिए कि हम जहाँ भी जाते हैं दिल में कुछ सोच लेकर जाते हैं ना। हम यहाँ से अगर पाकिस्तान भी जाएं या इंडिया आप जाएं, तो आप देखिए कि 20 घंटे लग ही जाते हैं ना कमोबेश, इधर उधर घूमे। क्यों जाते हैं? अपनों को मिलने जाते हैं ना। क्या नहीं मिलता इधर? अपने नहीं मिलते, प्यारे नहीं मिलते ना। तो जब कोई आपके पास आए या आप जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। और नबी सल्लम की सुन्नत थी कि वफूद का वालेहाना इस्तकबाल करते थे। बुखारी की रिवायत है 6176। खड़े होकर इस्तकबाल से खुशी से मिले, ये दीनदारी है। याद रखिए कि बाज़ लोग दीनदार के नाम के साथ सोच लेते हैं कि उसको दुनियादारी का कोई अदब, कोई मैनर कुछ आता ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। नबी सल्लम को जूं ही खबर मिलती थी कि कोई मेहमान आ रहा है तो आप खुद उसके पास जाते, उसको वेलकम करते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मेहमान को इज्जत के लिए मुनासिब जगह पर बिठाइए। ऐसी जगह जहां बदबू आ रही है, खुली जगह है, लोग गुजर रहे हैं, वहां ना बैठे। इसमें भी बाज़ लोग अक्सर के 99% तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन 1% अगर आप खुद ना हो इसलिए उसको सोच लें। जिक्र कर रही हूँ, घर का सबसे बेहतरीन हिस्सा मेहमान के लिए खोलना चाहिए। बाज़ लोग सिर्फ इसलिए कि बाद में सफाई करनी पड़ेगी, इनके साथ बच्चे हैं, इसके साथ ये मामला ना हो, वो मेहमान को ऐसी जगह पे बिठाते हैं जो मुनासिब नहीं होती। बेहतरीन हिस्सा घर का मेहमान के लिए होना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि खाने पीने का एहतमाम और मशरूबात आते ही पेश करना चाहिए। सूरह ज़ारिया 24:27 में हज़रत इब्राहिम का किस्सा याद कर लीजिए। पूछा ही नहीं कि क्या खाएंगे क्या नहीं पियेंगे, बल्कि पेश कर देना चाहिए। कोई ना खाए ना पिए वापस ले जाए, पूछना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। एक आध चीज़ है रख लीजिए, और 10 किस्म के जूस भी इकट्ठे करके नहीं ले जाने चाहिए कि अगला कह दे कि मैंने सारा आज ही नहीं पीना, मैं कुछ कल भी पी सकता हूँ, खा सकता हूँ। फिर इसी तरह से खुद को पीछे रखिए, मेहमान को आगे कीजिए। खाना हाजिर करें और मेहमान के करीब रखें खाना, सूरह ज़ारिया 27। अगर खाना कहीं अलग जगह पे लगा दिए तो मेहमान को उधर बुला के ले जाइए। फिर इसी तरह मेज़बान को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि मेहमान की खिदमत करे, लेकिन तकल्लुफात में नहीं बढ़ना चाहिए। जो बुरी चीज़ है ना वो तकल्लुफ है, क्योंकि तकल्लुफ में है तकलीफ ज़्यादा, ज़ारिया 26 है। फिर इसी तरह तकल्लुफ बाज़ दफ़ा मेहमानों के इस्तकबाल में रुकावट बन जाता है। बाज़ लोग मेहमान को बिठा कर खुद किचन में घुस जाते हैं, समोसे तले, पकोड़े तले, चिकन तला, फिश तली। वो समझते हैं शायद आने वाला किसी होटल में आया और उसको अब हर आइटम चखानी लाजमी है, टेस्टर है वो। नहीं, मुनासिब तरीका नहीं है। अच्छे तरीके से रखिए, अगले को खुशी दे, ये नहीं कि मेहमान शर्मिंदा होता रहे कि अब मैंने आकर आपको तकलीफ दी है। फिर इसी तरह मुलाजमों से नहीं, खुद खिदमत कीजिए अपने मेहमानों की, ये भी इस्लामिक अदब है। और हज़रत इब्राहिम ने तो खुद ही बछड़ा भून के रख दिया था, आयत 26:27 ज़ारियात। और इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा अपनी किताब में, बाब व इकराम व दईफी व खिदमत हु इयाहु बि नफ्सिही, मेहमान की इज्जत करना और खुद उसकी खिदमत करना अपनी जान से। ये टॉपिक का नाम है इमाम बुखारी ने, जहाँ भी ये बात की है, खुद ज़्यादा अच्छी की जा सकती है। फिर इसी तरह से देखिए, मेहमान को इसका हक देना है। हक कितना है? 1 दिन और 1 रात, यानी 24 आवर्स तक जो भी आप देंगे ये मेहमान का हक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रात ज़ियाफ़त है। अब 3 दिन के बाद क्या करें? पाकिस्तान वालों से क्या आप जाइए? और इंडिया वालों से कि आप जाइए या फिर होटल ले लीजिए, नहीं, फरमाया 3 दिन के बाद हर चीज़ जो आप मेहमान पे लगाते हैं वो सदका है, घर बैठे सदके का अजर, और वो सदका जिसमें से आधा आप खुद ही खा दें। कई घर वाले क्यों खुश होते हैं, क्या कहते हैं हमारे कल्चर में, बच्चे क्यों खुश होते हैं मेहमानों के आने पे, खाने मिलेंगे, और हस्बैंड क्यों खुश होते हैं, वो कहते हैं ना कि मेहमान आए और खाना लगा तो सब हाथ धो रहे, तो मियाँ साहब भी हाथ धोने लगे, तो बेगम पीछे से बोली आप क्यों हाथ धो रहे हैं, कहो मैं हाथ धो के बच्चे को उठाऊंगा। तो बाद मर्दों को उस वक्त भी इजाज़त नहीं होती, लेकिन यह है कि घर वालों को भी मिलता है। लेकिन याद रखिए, मेहमान घर में आ जाए आपका एक एक लुकमा सदका बन जाता है। क्यों हजरत इब्राहिम खाते ही नहीं थे बगैर मेहमान के, कि मेरा खाना सदका बन जाए। और ये रिवायत बुखारी की 6134, मुस्लिम 2729 है। फिर इसी तरह मेहमान पर ठहरने की मुद्दत के सिलसिले में एहसान करना चाहिए, और सोने खाने पीने नहाने धोने सफाई का एहतमाम करने में हुस्ने मामला करना चाहिए। फिर मेज़बान को खाना जल्द पेश करना चाहिए, ये मेहमान की इज्जत है, यानी कि उसको बिठा दे और उन्हें कह के बैठे अभी तो खाना पका ही नहीं है। फिर इसी तरह जब तक मेहमान फारिग ना हो जाए मेज़बान को दस्तरखान से नहीं उठना चाहिए, ये बैड मैनर है, आप बैठे रहिए वो खाते रहे और साथ बैठे रहे। फिर इसी तरह बीच बीच में थोड़ा बार बार कहते रहना चाहिए, अच्छा खाना तो बहुत थोड़ा और बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा खाना बेमुरव्वती है और ज़्यादा खाना रखना तसन्नो है, दोनों ही बातें इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। मुनासिब रखिए, देखिए सबको पता है मुनासिब क्या होता है, अगर आपने एक चावल बना दिए तो एक सालन बना दीजिए, साथ एक सैलड बना लें, ठीक है आपको लगता है कोई चावल नहीं खाता तो दो रोटियां रख दे, दैट्स इट। और अगर आप 10 खाने पका लें, अच्छा लोग आए 10 और आप गिन के 8 को लोगों का खाना रखें कि दो तो नहीं खाएंगे, गलत है ये, इतने घुटे हुए दिल की बात है। मैं एक ऐसे आलिम को जानती हूँ कि किसी रिश्ते के सिलसिले में एक दूसरे को मिले और सिर्फ इस बात पे उनका दिल बोझल था कि यहाँ मैं अपनी बेटी नहीं भेजूंगा, कि आज हम रिश्ते नाते के नाते से गए और इतना यानी हाथ खींचा हुआ था उनका या दिल खींचा था, तो कल ये क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर तो लोग वैसे ही फ़राख दिली से लौटाते, तो दिल तंग नहीं होना चाहिए। मैनेज कर लीजिए, खाना बच गया आप उसको फौरन उसको रुक के किसी और को भी दे सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो मारूफ है कि मेहमान होकर जाए तो एक हफ्ता फ्रिज का क्या हाल होता है, और मैंने किसी से कहा फ्रिज में नहीं है तो फ्रीजर में रख लेगा, फ्रीजर का भी यही हाल है, और अल्लाह माफ़ करे हम लोगों को। यानी पहले तो मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ जो मैंने लोगों में देखा है, जिस जगह भी हम तो हर वक्त ही मेहमान होते हैं, अल्लाह हम पे रहम करे, किस किस का हक है हमारे ऊपर ये तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते हैं खाना नहीं ख़त्म होता, जिस जगह भी जा कर रहे हैं, पता नहीं ये हमारी मोहब्बत का क्या इजहार है, कैसे लोग पूछ लेते हैं बता लेते हैं। यानी ख़ास तौर पे मुझे याद आ रहा है रमज़ान में हम पिछले सालों में भी जहाँ थे तो हर दिन मग़रिब से पहले इतने खाने होते थे, हालांकि स्केजुअल थे, सबको उन्होंने बारियां दी हुई थी कि अगर आपको बहुत शौक है तो आप आज ले आइए आप कल ले आए जो भी, इसके बावजूद भी इतने खाने थे, पूरी गली पूरा मोहल्ला और इर्द गिर्द वाले खाते थे, घर वाले कोई खाए ना खाए बरकत कह लीजिए या क्या है, लेकिन खाने को बांट लें। बहुत ज़्यादा आप उस खाने को इस तरीके से ना रखिए कि अब लालच करते फिरें, आप थोड़ा सा ले लीजिए, आपको पहले ही समझ आ गया खाना ज़्यादा है तो बचने के बाद जो देना है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, मैं उनको कहती थी अब थोड़ा सा निकाल लें बाकी सब को मोहल्ले में बांट दें, सारे बड़े खुश होते थे कि चलो भाई अच्छा हो गया। तो देखिए ये तो सदका ही है जितना भी कोई करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने और ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह मेहमान को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि बेचारा रो पड़े, कुछ की खुशी पूरी नहीं होती बस मेरी खुशी के लिए, कुछ लोग डालते जाते हैं, पहले डालने पर आप खुश हैं चलो डाल दिया, दूसरे पे आप जरा सा खींचते, तीसरे पे तो गुस्सा आने लगता है, नहीं 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 ये भाई आपने मैं क्या समझा, तो एक मुनासिब अंदाज से काम कीजिए। फिर इस तरह मेज़बान जब जाने लगे तो दरवाजे तक उसको रुख्सत कीजिए। इमाम शाबी रहमहुल्ला कहते हैं ज़्यारत करने वाले की ज़्यारत तब मुकम्मल होती है जब मेज़बान इसे दरवाजे तक छोड़ने जाए और सवारी तक पहुँचाए, और ये मेहमान की इज्जत में है और असलाफ का तर्ज़ अमल है। फिर इसी तरह मेज़बान को उस वक़्त तक घर के अंदर वाले हिस्से में नहीं आना चाहिए जब तक कि मेहमान की सवारी रुख्सत ना हो जाए और वो वहाँ से पलट नहीं जाए, यानी कि उनको बाहर भेज के दरवाज़ा बंद कर लें कि जान छूट गई। तो आप देखिए कि ये चीज़ें आपकी हैं, अब अभी तक आप क्या थे मेज़बान, अब क्या बनने लगे हैं आप, मेहमान, दिल चाहता है ना कि अब हम मेज़बान हैं तो आप भी मेहमान बने, तब उसके भी चंद अदा आप नोट कीजिएगा। नंबर एक, दावत कबूल करनी चाहिए। जब किसी को दावत पे बुलाया जाए तो बिला उज़र इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ, उज़र क्या है, एक जुमला लिख लें, सारी बातें उसमें आ जाएंगी। उज़र क्या है? दीन या जिस्म का नुकसान। दीन का नुकसान कहाँ है? हराम खाना, हराम दावत, सोर्स ऑफ इनकम हराम, जिस दावत में बुलाया जा रहा है वहाँ हराम का। बस 100 बातों की एक बात है। इसमें शादियों की दावत आ गई, वलीमों की दावत आ गई, मंगनियों, उपटनों और जो कुछ सालगिरों के नाम पे है, एक जुमला लिख लें, हर दावत कबूल करनी चाहिए सिवाय उस दावत के जिससे दीन में हर्ज आए और जिस्म में यानी सेहत का नुकसान है। कोई ऐसी चीज़ आपको ऑफर करता है, आए आइसक्रीम खाकर आते हैं जिसमें मिर्चें डली होंगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा? आप नुकसानदेह चीज़ है ना। अब एक शुगर पेशेंट को अगर आप कोई बहुत ही ऐसी चीज़ की दावत दें जो उसके नुकसान के लिए, ऐसी दावत को कबूल नहीं करना चाहिए। बुखारी 5178 और मुस्लिम 3514। दूसरी बात है कि दावत कबूल करने में फ़र्क नहीं करना चाहिए, फ़कीर की भी कबूल कीजिए और अमीर की भी कीजिए। दिल दोनों का एक ही जितना होता है, दिल का साइज़ गरीब का भी उतना ही है और अमीर का। और मैंने देखा जिसके पास कम होता है वो ज़्यादा दिल खोलता है, ये भी एक फितरी सी बात है क्योंकि उसके दिल में चाहत ज़्यादा होती है। हज़रत हसन बिन अली एक दिन गरीब लोगों के पास से गुजरे, वो ज़मीन पर पड़े रोटी के टुकड़े खा रहे थे। हज़रत हसन को देख कर दावत दी, आइए हमारे साथ बैठिए, अल्लाह के रसूल के नवासे, हमारे साथ जा मिलो। आप अपनी सवारी से उतरे, उनके साथ बैठे, खाना खाया और फरमाया, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, कि अल्लाह मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता। तो याद रखिए, गरीबों की भी कबूल करें। फिर इसी तरह दावत कबूल करने में दूर और करीबी रिश्तेदार का फ़र्क नहीं करना चाहिए। पहले आने वाले की दावत कबूल कीजिए, दूसरे से माजरत कर लें, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट। फिर इसी तरह किसी के घर जा रहे हैं तो इजाज़त लीजिए, हो सकता है वो काम उसके लिए ठीक ना हो तो उस वक्त ना जाइए, फिर बाद में किसी और वक्त में चले जाइए। फिर इसी तरह मेज़बान को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, यानी ना तो वक्त से पहले और ना वक्त से बहुत देर के जिस पे आपका मेज़बान परेशान हो जाए। फिर इसके बाद मेज़बान के घर में आप दाखिल हुए, तवाज़ो से बैठिए, जहाँ बिठाएं वहाँ बैठिए, यानी कि उनके पीछे पीछे किचन में और उनके पीछे पीछे उनके बेडरूम में। ये बेतकल्लुफ दोस्तों को बुलाने में नुकसान क्या होता है कि सारा घर साफ करना पड़ता है, उन्होंने अलमारियाँ भी खोल खोल के देखनी है, पेंट्री भी देखनी है, पूछते भी हर बात है ना, तरकीबें भी पूछते हैं। तो सलीके से बैठिए, हर जगह ना घुसिए घर वाले के पीछे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और चीज़ क्या है कि किसी के घर पहुंचे तो बेल पे हाथ रखने में एहतियात बरते हैं। बाज़ लोग बेल को भी बता देते हैं कि हम आ गए हैं। हमारे पाकिस्तान में तो मारूफ है कि बेल से पहचान लेते हैं ये फलां आ गए। ये आज तो फ़ोन और मैसेजेस हैं, पहले तो लोग आ जाते थे। तो बेल पे ज़रा प्यार से हाथ रखिए, एहतियात से करें, मिलें तो पहले सलाम करें, शिकवा ना करें। अच्छा, हम किसी को मिलते भी हैं तो शिकवा ही, आ गया ख्याल आपको हमारा, बुला लिया आज आपने हमें, याद आ गई आपको हमारी। तो मोहब्बत के बुझे हुए तीरों के साथ अगले का वेलकम ना करें। फिर इसी तरह सलाम करें, अपना तारुफ कराएं अगर पहले से नहीं जानते, नज़रें नीची होनी चाहिए अगर कहीं गैर महरम है, और आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए। फिर एक और मेहमान को बहुत ज़रूरी है करना, घर के हालात के बारे में तजस्सुस ना करें। बिला ज़रूरत घर में मत घूमिए, ज़्यादा देर ना रुकिए, घर वालों की इजाज़त के बगैर घर में अंदर ना आइए। कोई बच्चा आके दरवाज़ा खोल दे तो मत जाइए, इल्ला ये कि पीछे से किसी बड़े की आवाज़ आए कि आ जाइए, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही दरवाज़ा खोलने को तैयार होते हैं, उन्होंने खुद बाहर भागना होता है। फिर इसी तरह से अगर आपका रोज़ा है और घर वाला आपको कुछ खिलाना चाहें तो नफली रोज़ा भी इफ्तार कर लेना चाहिए, और ना करने को दिल करे तो घर वालों के लिए भलाई की दुआ करें। ये मुस्लिम की रिवायत है 3520। फिर इसी तरह से मेहमान को आदाब के साथ खाना चाहिए, पीने का और बोझ और तंगी का जरिया नहीं बनना चाहिए। बुखारी 6135 और दिल की गहराई से मेज़बान का शुक्रिया अदा करें। तिरमिज़ी 1955, खुश खुश वापस चाहिए, और ये नहीं कि अगर कोई कमी बेशी होगी तो उसको जतलाता रहे। आपको पता है कि एक मुसलमान के दिल में खुशी भरना कितनी बड़ी नेकी है। इस नेकी से हम पीछे रह गए हैं, कोई कमी पेशी हो जाए उसको पीछे का। हम आके कहते हैं उसमें नमक कम था, उसमें जरा चीनी तेज हो गई थी, वो जरा कड़क ज्यादा हो गया था, वैसे खातिर उन्होंने बड़ी की। तो ऐसी चीजों का ना रखिए, ये बुरी बात है। आप कहते हैं कि खुश खुलकी नफली नमाज रोजे से ऊपर बंदे को ले जाती है, और फिर मेहमान बने मेजबान को क्या दुआ देंगे? अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी मा रज़क्तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। कितना प्यार बढ़ता है इन दुआओं के साथ, और आज हमारे कल्चर में इन चीज़ों को आम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है।